Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Krishna Madhavo, कृष्ण माधव पाहे माम। कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहे माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष माम। कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहे माम। कृष्ण माधव कृष्ण माधव कृष्ण माधव पाहे माम।
ओ सच्चिदानंद भगवान की शक्ति समता वात्सल मई माताओं स्नेह मई बहनों आश्रम बंधुओं तैतरीय आरण्यक को लेकर के प्रसंग चल रहा है ओम की उपासना का, जिसके अंतर्गत चर्चा ये की गई कि ओम की उपासना उनकी व्याहृतियों को लेकर के, व्याहृतियों की चर्चा किस लिए की गई तो एक क्रम बतलाया और उस क्रम को लेकर के हमें उपासना करनी चाहिए। अब क्या क्रम है तो उन व्याहृतियों को बतलाते हुए बतलाया कि वो भव स्व और चतुर्थ व्याहृति बतलाई मह। भू व्याहृति का हमें जो है ध्यान करना है, उपासना करनी है तो किस रूप में, तो इसके लिए भू का स्वरूप बतलाते हुए कहा भू क्या है, तो भू के अंतर्गत समस्त यह जो पृथ्वी लोक है उसको ले लिया और उस पृथ्वी पर होने वाले जो देव अग्नि वेद आदि उनको ले लिया और इस प्रकार से उसका हमें ध्यान करना है। तो अब जब भू नाम की व्याहृति का ध्यान करेंगे तो ध्यान में क्या वृत्ति बनेगी, तो यह वृत्ति बनानी है उस देव को ब्रह्मा आदि को लेकर के कि यह संपूर्ण जो पृथ्वी है यद्यपि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की है तो हम जानते हैं, उसकी मूर्तता है और मूर्त होते हुए भी वो जड़ रूप है। कैसी है? जड़ रूप। और उस मूर्त रूप से ही होने वाले जितने भी भूत और भौतिक पदार्थ हैं, वह समस्त भूत और भौतिक पदार्थ भी कैसे हैं? तो कहा वो भी जड़ हैं। अब जब वो भूत और भौतिक शब्द का प्रयोग कर दिया तो पृथ्वी से अर्थात भूतों से होने वाले जो हैं वो हैं भौतिक, तो उनका होना हुआ। अब होना जो होता है वो बगैर किसी चेतन को स्वीकार किए संभव नहीं। यद्यपि अन्य शास्त्रों के अंतर्गत या वैज्ञानिक आदि प्रक्रिया के अंतर्गत हम उसे कह देंगे कि परमाणुओं से हुआ, क्या कह देंगे कि यह जितना भी भौतिक जगत है वो परमाणुओं से हुआ, या सांख्य शास्त्र के अनुसार कह देंगे तो भूतों से हुआ, और बौद्ध आदि के अनुसार पुद्गलों से हुआ, जैन आदि के अनुसार त्रत्न से हुआ। इस प्रकार से उसके नाना रूप हम स्वीकार करते हैं। लेकिन विचार ये करना है कि यहां पर जो भी परमाणु या जो भी भूत या त्रत्न या पुद्गल आदि हैं, उनमें क्या वह चेतनत्व विद्यमान है जिसको लेकर के यह सारी क्रिया संपन्न हो जाती, और यदि चेतनत्व नहीं है तो इनमें क्रिया कैसे हुई? ये जब प्रश्न आता है तो स्वीकार ये कर लेते हैं कि उन अणु परमाणुओं में और जो है पुद्गल आदियों में यद्यपि स्वयं में वो जड़ हैं, लेकिन जड़ होते हुए भी उनके अंदर कोई स्पंदनात्मिका शक्ति है। जिस स्पंदनात्मिका शक्ति को लेकर के परस्पर उनमें जो है संघात हो जाता है, स्पंदन शक्ति को लेकर, और उस स्पंदन शक्ति को लेके जब संघात होता है तो पदार्थ की एक स्वरूपता सामने आ जाती, और इस प्रकार से सारा जगत बन गया। अब जहां पर अणु परमाणुओं के अंदर जो स्पंदन है वो स्पंदन भी एक शक्ति विशेष हो गया। वो स्पंदन भी कब? क्योंकि जहां पर भूतों की कल्पना की तो पृथ्वी वायु तेज अग्नि आदि कहकर के, आकाश आदि कहकर के जो भी कहा, और उनको भी कह दिया कि ये भी कैसे हैं? कहा जड़ हैं। और जड़ होकर के ये भी कैसे हैं? तो कहा ये भी अंत वाले हैं और आदि वाले हैं। अब विज्ञान आदि उनको अंत वाला तो मानता ही है, आदि भले न माने। विज्ञान तो यहां भी कहता है कि सूर्य की अवधि जो है इतने वर्षों तक है, ऐसा संकेत करते। तो अब इस प्रकार से जब विचार किया जाता है तो कहा इनकी अवधि इतने पर्यंत है, तो उनमें जो क्रिया हुई और जो स्पंदनात्मिका शक्ति, तो वो किसका धर्म है? कहा वायु का। वो धर्म किसका है? वायु का। और वायु का धर्म है तो वायु का धर्म भी अंत वाला है, और जब वायु का धर्म अंत वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वायु भी एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्पंदन शक्ति उसमें है लेकिन वो स्वतंत्र शक्ति नहीं। यदि उसका अंत होता है तो उसका भी कोई अधिपति होना चाहिए, उसको भी प्रेरणा देने वाला कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब प्रश्न सामने आता है तो कहा फिर उससे आगे कौन है? तो जितना भी विज्ञान या अन्य लोग हैं इसके आगे क्या उत्तर देंगे? इसके आगे फिर स्पंदन शक्ति के आगे उनके पास उत्तर क्या है? तो कहना पड़ेगा कोई न कोई शक्ति है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जहां पर हमने स्पंदन शक्ति को लेकर के और सृष्टि प्रक्रिया को स्वीकार किया, लेकिन उपनिषदों के अंतर्गत ऋषियों की अवधारणा के अनुसार यहां पर जो बृहदारण्यकादि श्रुतियों के अंतर्गत संकेत किया, प्राणः यजुः, क्या संकेत किया? प्राणः यजुः, यह जो प्राण है वो क्या है? तो उसे नाम दे दिया यजुः। यजु शब्द का अर्थ क्या है? तो यत और जू शब्द को मिलाकर के वहां यजु शब्द को बतलाया है। तो यत और जू के मिलने पर ही क्या हुआ? कहा प्राण हुआ, ये संकेत हो गया। अब यत क्या है और जू क्या है ये विचार करना पड़ेगा। तो यजु और उसे प्राण करके कह दिया, तो संकेत कर दिया वहां दो पदार्थ जब स्वीकार करते हो तो यत क्या है और जू क्या। तब वहां संकेत किया कि यत शब्द जो है, यत तदोर नित्य संबंध, ये व्याकरण का नियम, यत शब्द का और तत् शब्द का नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध का मतलब समवाय संबंध कहते, नित्य संबंध कहते, और वो नित्य संबंध है तो नित्य किससे होगा? नित्य संबंध जो है बगैर सत्य का आधार लिए संभव नहीं हो सकता। तो अब नित्य संबंध जो है तो उसका आधार, उसका अधिष्ठान क्या होगा? तो संकेत किया कि सत्य पदार्थ होगा। सत्य में ही जो होगा, सत्य में जो आएगा वही नित्य हो सकता, लेकिन नित्य और सत्य में थोड़ा सा फर्क। इसलिए संकेत किया कि जो सत्य है उसका कभी भी किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में और किसी भी देश में जिसका अभाव न हो, किसी भी अवस्था, किसी भी काल या किसी भी देश में और किसी भी वस्तु के रूप में जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें अभाव न हो, उसे हम सत्य कहते हैं। और नित्य किसे कहते हैं? ऐसे सत्य को आश्रय बना करके जो देश विशेष में, काल विशेष में रहता हुआ और अधिक उसकी स्थिति हो, काल की उपाधि को लेकर के, देश की उपाधि को लेकर के, वस्तु की उपाधि को लेकर के, उसे हम नित्य कहेंगे। तो अब जब तक काल रहेगा, जब तक देश रहेगा, तब तक तो उसकी सत्ता होगी, लेकिन जहां काल का अभाव कर दिया जाए, देश का अभाव कर दिया जाए, तो वहां पर जिसकी सत्ता नहीं रहेगी। तो नित्य एक काल पर्यंत, देश पर्यंत, वस्तु पर्यंत हम उसकी नित्यता स्वीकार कर लेते, और काल की गणना हमारे लिए जो है अंत करने में थोड़ी असंभव हो जाती, काल को हम जो है अंत नहीं कर पाते, किंतु क्या करता है? काल हमारा अंत कर देता है। अब यहां चिंतन ये करना है कि काल जो है, उस काल का भी जो आश्रय, उस देश का भी जो आश्रय, ऐसे उस से समन्वित जो ये है, तो जू करके ये समस्त उपाधियों को ले लिया, काल उपाधि, देश उपाधि, वस्तु उपाधि, और काल देश वस्तु को लेकर के होने वाले जितने भूत भौतिक पदार्थ, वो सब एक उपाधि हो गई, और उन उपाधियों का आश्रय, जहां उपाधि कहोगे तो उससे उपहित कोई न कोई होगा, वो उपहित होगा कौन होगा? तो वो आश्रय होगा, अधिष्ठान होगा। अधिष्ठान का जो है, काल के न होने पर भी, देश के न होने पर भी अधिष्ठान का अभाव नहीं होता, अवस्था का न होना भी उसका अभाव नहीं होता। तो ऐसा पदार्थ है वो सत्य है, काल आदि को लेकर के होने वाला जो है वो नित्य है। तो ऐसे जितने भी हम नित्यादि जो पदार्थ मानते हैं उन सब का भी अन्वय समन्वय कहाँ है, तो क्या कहेंगे? कहा उस अधिष्ठान विशेष में, उस सत्य विशेष में। अब जब ये चर्चा आई तो कहने लगे कि वो सत्य क्या है, कैसे सत्य को समझें कि और इनमें सब में उसकी अन्वितता समन्वितता है। तब उसके लिए संकेत किया, क्या कहा, उसी को लक्ष्य करके यहां जो कहा, मनोमयो अयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है, तो कहा मनोमय है। अब मनोमय है तो ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि मन की उपाधि में ही उसका बोध होता है, उसे जाना जाता है। तो मन की उपाधि में उसे जाना जाता है, लेकिन जाना जाता है तो मन की उपाधि में जानने वाला कौन है, कोई जानने वाला तो होगा, कौन जानता? तब संकेत किया जानने वाला का विद्वान है, तो विद्वान का भी संघात इत्यादि को लेकर के होने वाला। तो अब जो है जानने वाला कौन है, इसलिए बड़ी सरल भाषा में जो तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा, सोई जाने जय देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। यदि इस चौपाई पर विचार करें तो इस क्या चौपाई गई, कहा वही जानता है, सोई जाने वो ही जानता है। कहा कौन, कहा जिसको वह जनवाता है, इतना संकेत किया, सोई जाने जय देह जनाई, और यदि जान लिया तो जानत तुम्हें हो जाए। जानने पर वो क्या हो जाता, कहा जिसको जानता है वही हो जाता। तो जनाने वाला भी दूसरा, और जान करके जिसको जाना और वही हो जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शब्द का प्रयोग किया, या इमे वही स्मृते तेन लभ्य है, या ब्रह्मविद ब्रह्मी भवती आदि आदि जो शब्द आप सुनते रहते हो, इनका तात्पर्य क्या, कहा जानने वाला भी कौन है, तो कह दोगे विद्वान, लेकिन विद्वान कब जानता है, कहा जब उसे जनाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, वो जानने में स्वतंत्र नहीं, और जानेगा विद्वान तो किसके द्वारा जानेगा, अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ही जानेगा, बगैर अंतःकरण के उसे जो है विद्वान कहा जाएगा नहीं। तो अंतःकरण में जो है उसका साक्षात्कार होना, जानना। अब अंतःकरण में जानना तो इसलिए ही संकेत कर दिया कि अंतःकरण में जो जानना ज्ञान प्रकाश है वो किसका है, कहां से है, कैसे, इसको लेके ही कह दिया मनोमयो अयम पुरुषः, है ना। तो यहां कहा तस्मिन् अयम पुरुषो मनोमयः और हिरण्यमयः और अमृतः आदि शब्द से कहा, वृदारण्यक श्रुति के अंतर्गत भी इस बात को संकेत किया, वहां संकेत किया, कहा पुरुषो मनोमयः भारूपः सत्यः, ये संकेत किया। तो वहां पर संकेत किया कि पुरुष कैसा है, कहा मनोमय, और कैसा है, तो संकेत कर दिया भारूप, भारूप है, और सत्य हो, और कैसा है, सत्य। अब ये जो वहां पर संकेत किया तो सत्य कह दिया और भारूप, वो सत्य भी कैसा है, तो दोनों शब्द जोड़िए भा सत्य हो। केवल वह सत्य नहीं तो हम नित्य पदार्थ जैसे पृथ्वी आदि काल विशेष तक रहते हैं तो वो भी नित्य है, लेकिन वो कैसे जट, इसलिए वहां शब्द दिया मने सत्य और भाषा, भा सत्य हो, वो कैसा है, सत्य है और प्रकाश रूप, प्रकाश अलग कोई धर्म उसका नहीं है, वो सत्य प्रकाश है, या प्रकाश ही सत्य है, सत्य ही प्रकाश, ऐसा भी कह सकते। ऐसा जो है वो कहां है, तो क्या कहा, पुरुषो मनोमय, यह पुरुष मनोमय और कैसा है, तो संकेत कर दिया सत्य है, प्रकाश रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो मन है वो भी एक उपाधि, अंतःकरण है वो भी एक उपाधि, लेकिन उस उपाधि में जो जिसको उपहित करती है या जिसको आश्रय बनाती उपाधि, वह जो आश्रय है वो है सत्य और वो है प्रकाश रूप। उसके प्रकाश में रह करके वह उपाधि क्या करती है? कहने लगे तब वह उपाधि जानने में समर्थ होती। तो अब जिसको जानती है वो भी कहां है? कहा उसी उपाधि। और जिसको जानती है जनवाने वाला कौन है? कहा वही। ये संकेत हो जाता। तो अब जो है अंतःकरण के अंतर्गत इस रूप से यहां हिरण्यमय शब्द आदि से कह दिया, इस प्रकार से वह जो विद्यमान है, तो इसका मतलब केवल ये नहीं समझ लेना कि केवल वह अंतःकरण में है। और वहीं आगे और किया, व्रीहि इव इव, आकाश शब्द का प्रयोग, तस्मिन आकाशे, वहीं पर जो अंतःकरण में आकाश है, यहां हृदय शब्द करके कह दिया, उसमें जो आकाश, वह आकाश है, उसमें आकाश का परिणाम कितना बतलाया? जैसे एक जौ का दाना या एक धान का दाना, उस धान के दाने के बराबर या जौ के दाने के बराबर जो आकाश हो, उस आकाश में, और उससे पहले ही वहां क्या कह दिया कि उसमें जो है उसकी उपलब्धि होती है। किसको उपलब्धि होती है? तो विद्वान शब्द का प्रयोग कर दिया या ध्यानी शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जो उसकी उपलब्धि होती है तो केवल उपलब्धि करके कह दिया, ये नहीं कहा उतना ही है। तब वहां क्या कहा फिर, कैसा है? तो कहा आकाश शरीर खम ब्रह्म, ये सब शब्द प्रयोग किए वहां, माने वो खम ब्रह्म, वो जो ख है वही ब्रह्म है, आकाश ही उसका शरीर है। अब ये जब शब्द आ गया कि खम ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, तो आकाश तो हम जानते हैं भूतों के अंतर्गत है, और आकाश कैसा है? जड़ है। तब ये जानने वाला, जनवाने वाला और जो जाना गया है वो कौन है, ये फिर प्रश्न आ जाए। तब वहां आचार्य शंकर ने एक बड़ी कल्पना सुंदर करते हुए लिखा, सदानंद चिदाकाशे, क्या संकेत किया? सदानंद चिदाकाशे माया मेघस्तडिन मनः, वहां पर आकाश शब्द का प्रयोग किया, और आकाश शब्द का प्रयोग करते हुए उस आकाश के साथ में विशेषण क्या दिए? का सदानंद हो। और कैसा आकाश है वो? तो कहने लगे सदानंद, जो आनंद रूप है और सदा रहने वाला, जो सत्य है। और कैसा है? तो कह दिया चिदानंद, चिदाकाशी मनी चैतन्य रूप है, वो जड़ रूप आकाश नहीं, अर्थात वो भूताकाश नहीं। उसे किस रूप में ग्रहण किया? तो कहने लगे चिदाकाश। अब उस चिदाकाश में ही वो जो सदानंद और जो चैतन्य रूप आकाश है, ऐसे उस आकाश में ही तब संकेत किया माया मेघ हो। अब वहां शब्द प्रयोग कर दिया माया, ये समस्त भूत भौतिक कांप से हुए हैं, तो प्रकृति माया से लेकर के, माया की उपाधि के बगैर तो होंगे नहीं, लेकिन अब जिस माया से इनकी भूतों आदि की प्रतीति है, उन भूतों से सारी सृष्टि की प्रतीति है, चाहे वो अणु परमाणु आदि से लेकर के और स्थूल पर्यंत क्यों न हो, सबकी सृष्टि वहां से मानी गई। तो अब संकेत वहां कर दिया गया चिदानंद सदाकाशी चैतन्य रूप जो आकाश हो, और वही यहां पर जो खम ब्रह्म करके जिसको कहा, तो उसी आकाश, उसी को लिया गया। यहां खम शब्द से केवल भूताकाश को ग्रहण नहीं किया, वहां पर काफी व्यवस्था के अंतर्गत विश्लेषण किया। तो ऐसा जो चिदानंद रूप जो आकाश और सत्य नित्य आदि, अब जो है ऐसे उस आकाश में ही क्या है? माया मेघ। क्या कल्पना की? कहा माया। और कैसे उदाहरण दिया? कहा मेघ हो। अब विचार कर लो, भूताकाश को थोड़ी देर के लिए ले लो, भूताकाश में आप इस चीज को देखते हो, प्रत्यक्ष करते हो कि भूता जो काश है, ये जो आकाश है, मेघ कहां आते हैं? और संपूर्ण आकाश में मेघों की सत्ता दिखाई नहीं देती। किंचित देश विशेष में और किंचित काल विशेष में सर्वदा भी वह मेघ नहीं दिखलाई देते और जो है संपूर्ण देश में भी दिखलाई नहीं देते। तो किंचित काल विशेष में, किंचित देश विशेष में और उन मेघों का होना देखा जाता। तो क्या मतलब हुआ? इस भूताकाश में ही सर्वकाल और सर्वदेश में वह मेघ रूपी वस्तु नहीं। वो वस्तु क्या है? तो अल्पकाल में, अल्प देश में, यही कहना पड़ेगा। तो अल्पकाल में, अल्प देश में मेघ आ गए और उस मेघ को क्या कह दिया? कहा ऐसे ही चिदानंद जो आकाश है, या जिसे देहराकाश आदि करके कहा गया, उस आकाश में भी कौन आ गई? का माया।